है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि विश्वास के नायकों का चरित्र चित्रण, जिसमें हमने अब्राहम, इसहाक और यहां तक कि हानोक और नूह के जीवन को भी देखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम सब देखेंगे कि अब्राहम और इसहाक तक आ जाने के बाद अब हम एक बहुरंगी चरित्र को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखना और सुनना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखें तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान और चिंताओं में हैं, रोजगार को लेकर, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में विश्वास को जगाएं, ताकि वे भी आप पर विश्वास करने पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारे विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे याकूब का विश्वास। तो आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 21 पद को पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। अपने पिता और अपने पुत्र यूसुफ के संबंध में याकूब का जीवन विश्वास आधारित जीवन था। अपने पोतों के संबंध में भी वह विश्वास का जीवन जी रहा था, परंतु उसके जीवन से चुनी गई एक बात उसके मरने के समय की थी, अतः आपको उसकी मृत्यु तक प्रतीक्षा करना होगा कि आप कह पाएं कि वह विश्वासी जन था। मरण शया पर उसने यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी पर झुककर उसने परमेश्वर की उपासना की। मेरे प्रियो, याकूब के जीवन में हमें अनेक बातें देखने को मिलती हैं। वह मानव स्वभाव का एक उदाहरण है, वरन अनुग्रह द्वारा उधार पाने का भी एक अच्छा उदाहरण है। यदि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो वह नाश हो गया होता। उसमें मानवीय योग्यता तो नाम मात्र के लिए नहीं थी, यह हम सब का ही चित्रण है। डॉक्टर जे हटसन टेलर, चाइना इंग्लैंड मिशन के संस्थापक, बल देकर के कहते थे कि परमेश्वर के समक्ष और केवल परमेश्वर ही कुछ नहीं को कुछ बना सकता है। वह एक अति आत्मविश्वासी परमेश्वर का सेवक था जिसकी कहानी हम सुनाते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ सेवा क्षेत्र में आया। एक दिन वह डॉक्टर टेलर के पास आकर बोला कि उसे स्वयं को कुछ नहीं मानने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर टेलर ने कहा, हे युवक, आप माने या ना माने, आप वास्तव में कुछ नहीं है। इस विषय में आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकते हैं। याकूब मानवीय स्वभाव का चित्रण है। आज मनोविज्ञान माता पिता द्वारा की गई सेवा, गर्भावस्था की देखरेख और बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखरेख के बारे में बहुत कुछ कहता है कि मनुष्य के निर्माण में इसका कैसा योगदान है। मनोवैज्ञानिक और स्त्री रोग विशेषज्ञ बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म और जन्म के तुरंत बाद बच्चे की देखरेख पर बहुत ध्यान देने की बात करते हैं। इस दृष्टिकोण से याकूब के विषय में क्या कहा जा सकता है? बाइबल के अनुसार याकूब और एसाव मां के पेट में ही संघर्षरत थे, अर्थात लड़ रहे थे। जन्म से पूर्व ही याकूब बड़ा होने का हक मांग रहा था। वह जन्म के समय भी संघर्षरत था। वह अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए उसके बाद जन्मा। वह धोखेबाज भी था, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने अपने पिता को धोखा दिया। परमेश्वर ने याकूब के लिए आशीषों की प्रतिज्ञाएं दी थी, परंतु वह उनके लिए रुक नहीं पाया। उसने अपने भाई को धोखा देकर उसे आशीषों से वंचित किया। इस कारण उसे घर छोड़कर भागना पड़ा और बेतेल में रात बिताई। उसे घर की याद तो बहुत आती थी, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जी हाँ, वह अपने मामा लाबान के घर में भी युक्तियों पर निर्भर था। अंत में जब वह अपने देश लौट रहा था, तब परमेश्वर ने उससे मलयुद्ध किया और उसे अपने वश में करने के लिए उसे लंगड़ा बना दिया। मेरे मित्रों, आगे चलकर हम देखते हैं कि उसका पाप यूसुफ के जीवन में आया। उसके अन्य पुत्र यूसुफ का रक्त रंजित वस्त्र लाकर कहते हैं, क्या यह यूसुफ का बागा है? वह रोने लगा। उसने अपने भाई के साथ जैसा धोखा किया था, वैसा ही धोखा उसके पुत्रों ने उसके साथ किया कि वह सोचे यूसुफ मर गया है। बाप दादों के पाप संतानों पर आ पड़ते हैं। यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। मेरे श्रोता मित्रों, उसके जीवन के अंतिम समय में इब्रानियों का लेखक एप्रेम और मनश्शे के साथ उसके विश्वास का वर्णन करता है। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय, वह मरणशया पर है, परंतु आप यह एक बात उसके बारे में कह सकते हैं, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय। याकूब ने यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और फिर परमेश्वर की उपासना की। यह उसके जीवन में आज्ञाकारिता की पहली घटना है। यह मेरी रुचि की बात है कि उसने परमेश्वर की उपासना की। वह लंगड़ा था, इसलिए लाठी का सहारा लेकर चलता था। उसका जीवन पाप में डूबा था। जी हाँ, धोखा, ठग विद्या, दुष्टता आदि। पाप से तो आशीषों का उदय होता ही नहीं है। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि परमेश्वर कैसे भी जीवन को साध सकता है जहां भ्रम और छल है, और यदि प्रभु यीशु में विश्वास हो तो हम उसे थाम सकते हैं। याकूब के जीवन में विश्वास कार्यकारी था, परंतु उसके विश्वास को देखने के लिए हमें उसके जीवन के अंत में आना होगा। तो आइए हम देखें यूसुफ का विश्वास। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। मुझे पूरा विश्वास है कि इब्रानियों की पत्री का लेखक और पवित्र आत्मा यूसुफ के जीवन की अनेक घटनाएं चुन सकते थे जिनसे उसका विश्वास प्रकट होता है। हम मिस्र में उसके बंदी बनाए जाने की घटना का संदर्भ दे सकते हैं। आप सोचते हैं यह उसके जीवन का अंत है, और शिकायत भी करते हैं, परंतु लेखक इसका उल्लेख नहीं करता है। उसके जीवन में और भी अनेक विश्वास की घटनाएं हैं। वह अपने पिता के कैसा विपरीत है। उसके जीवन में न दोष है न कोई गलती है। संपूर्ण पुराने नियम में यीशु के प्रतीक स्वरूप यूसुफ के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यूसुफ अपने पिता का सर्वप्रिय पुत्र था, और प्रभु यीशु भी अपने स्वर्गीय पिता का अति प्रिय पुत्र था। यूसुफ का बागा बड़ा ही रंगीन था जो उसे अपने भाइयों से अलग प्रकट करता था और प्रभुता का संकेत देता था। वह स्वप्न देखता था जिसके कारण उसके भाई उसे स्वप्नदर्शी कहते थे। प्रभु यीशु का संदेश सुनकर लोग उसे भी स्वप्नदर्शी कहते थे। यूसुफ अपने पिता का आज्ञाकारी था। प्रभु यीशु ने कहा था कि वह अपने पिता की इच्छा पूरी करने इस पृथ्वी पर आया था। मेरे मित्रों, यूसुफ के भाई उससे घृणा करते थे और यीशु के बारे में यूहन्ना कहता है एक अध्याय उसके 11 पद में कि वह अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण न किया। यूसुफ को उससे पिता ने अपने भाइयों को देखने के लिए भेजा और प्रभु यीशु इस संसार में खोए हुओं को खोजने के लिए आया था। यूसुफ ने अपने भाइयों को मैदान में भेड़ चराते हुए पाया। यीशु के जन्म पर स्वर्गदूत ने सबसे पहले चरवाहों को सुसमाचार सुनाया। यूसुफ के भाइयों ने उसकी निंदा की और उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा ही किया गया था। यूसुफ को बेच दिया गया कि वह दास हो। यीशु को भी 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया था। यूसुफ का बागा खून से रंगा गया और प्रभु यीशु के वस्त्रों पर सिपाहियों ने भी चिट्ठियां डाली थी। यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र में पाला पोसा कि संसार का भौतिक मुक्ति दाता हो। प्रभु यीशु संसार, देह और शैतान की परीक्षाओं से होकर मर गया कि संसार का उद्धार करता हो। सिंहासन पर बैठकर यूसुफ ने मनुष्य को रोटी दी। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। मिस्र में यूसुफ ने एक अन्य जाति स्त्री से विवाह किया। प्रभु यीशु इस संसार से अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है। यूसुफ ने मिस्र में अपने भाइयों पर अपने को प्रकट किया। एक दिन प्रभु यीशु भी अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट करेगा। मेरे मित्रों, यूसुफ के बारे में एक रोचक बात यह है, वह स्वप्न देखकर उनमें विश्वास करता था। अंधे कुएं में भी विश्वास रखना, मिस्र देश में भी विश्वास रखना, और विश्वास ही से उसे विषम परिस्थितियों में भी वह उबरता गया। आप सोचेंगे कि जीवन के अंत में वह मिस्र से संतुष्ट था, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, यूसुफ ने इसराइलियों से इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरे हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। उन्होंने यूसुफ की पार्थिव देह को उसी समय एप्रेम देश में क्यों नहीं दफन किया? क्योंकि उस समय वह राष्ट्रीय नायक था, परंतु आगे चलकर एक फिरौन ऐसा आया कि वह यूसुफ को नहीं जानता था। जब इसराइलियों ने मिस्र से कूच किया, तब उन्होंने यूसुफ की अस्थियों को साथ ले जाकर सामरिया के शकेम में दफन किया। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे मूसा का विश्वास। अब इसराइल अनेक वर्ष मिस्र देश में दास था। मूसा विश्वास के बलिदान का प्रतीक है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। मेरे मित्रों, मूसा के माता पिता ईश्वर भक्त थे और वे परमेश्वर के लिए दृढ़ता से खड़े रहते थे। अतः मूसा के जन्म में ही विश्वास का अंश था। आगे हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हम मूसा के जीवन में विश्वास को कार्यकारी देखते हैं। वह राजमहल में पाला और पोसा गया था और भावी राजा होता, परंतु मूसा का विश्वास उचित चुनाव करने में उसका सहायक हुआ। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 26 पद में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अब्राहम की अपेक्षा एक और मनुष्य ने परमेश्वर का दिन देखकर आनंद किया और वह मूसा था। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मेरे मित्रों, मूसा का विश्वास क्रियाशील था। विश्वास कर्मठ होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, परंतु करते कुछ नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं कि विश्वास कर्मों से प्रकट होता है? जी हां, परमेश्वर हमें कर्मों से निरपेक्ष उद्धार देता है, परंतु उद्धारक विश्वास कर्म उत्पन्न करता है। इसी कारण मूसा ने विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। इब्रानियों के पत्र 11 उसके 28 पद में लिखा है, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इसराइलियों पर हाथ न डाले। मूसा में परमेश्वर की आज्ञा मानने का विश्वास था। परमेश्वर ने उससे कुछ करने को कहा और उसने किया। उसके जीवन में यह एक उदाहरण है। उसने मिस्र के सुखों की चिंता किए बिना उन्हें त्याग दिया और रेगिस्तान बंजर भूमि में प्रवास किया कि आकर अपने लोगों को मुक्ति दिलाए। यह परमेश्वर की आज्ञा मानने का विश्वास है। आगे लिखा है इब्रानियों के पत्र 11 उसके 29 पद में, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मेरे मित्रों, हम यहाँ किसका विश्वास देखते हैं? क्या यह इसराइल वंशियों का विश्वास है? उनमें तो विश्वास था ही नहीं। उन्होंने तो फिरौन की सेना को देखकर मूसा से कहा, हम शीघ्र अतिशीघ्र मिस्र लौट जाएं। हमने मिस्र छोड़कर भारी भूल की है। मूसा में विश्वास था। उसने लाठी मारकर समुद्र के जल को दो भाग किया और वे चलकर पार हुए। यह मूसा का विश्वास ही तो था। उन्होंने तब मूसा रचित गीत भी गाया, परंतु यहां मूसा का विश्वास कार्यकारी था। मेरे प्रियो, अब हम आगे देखते हैं यहोशू का विश्वास। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 30 पद में लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। यहोशू के जीवन में हम विश्वास की चौकसी को देखते हैं। यदि आप यहोशू को यरीहो का चक्कर काटते 5वें दिन नहीं देखते तो निश्चय ही कहते, मुझे तो नहीं लगता कि तू कुछ कर पाएगा। इस मूर्खता के काम से तुझे क्या लाभ? तू एक बुद्धिमान सेनानायक है, परंतु यहां तू बुद्धि काम में नहीं ले रहा है। मेरे प्रियो, यह सुनकर वह आपसे कहता, तुम भूल रहे हो कि मैंने सेनाओं के यहोवा के सेनापति को देखा है। उसने मुझसे कहा था, मुख्यालय शिविर में नहीं स्वर्ग में है। अतः मैं जान गया कि मैं सेनानायक नहीं, पिछली पंक्ति का एक प्यादा हूं, सिपाही हूं, और मुझे उसी से आदेश ग्रहण करना है। उसी ने मुझसे कहा है कि मैं इस नगर के चक्कर काटूं, इसी कारण मैं इसकी परिक्रमा कर रहा हूं। आप केवल देखें कि ये दीवारें कैसे गिरती हैं। मैं एक अनुभवी मनुष्य की रणनीति पर चल रहा हूं। मेरे प्रियो, यहोशू में हम विश्वास की चौकसी देखते हैं। यहोशू ने सीख लिया था कि परमेश्वर पर भरोसा रखना ही विश्वास है। मेरे मित्रों, अपने अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि राहाब ने भी विश्वास किया था और उसका विश्वास अद्भुत कहा जाना चाहिए। विश्वास ही के कारण राहाब सुरक्षित रखी गई। राहाब पेशे से वेश्या थी और समाज उसे पापी कहता था। राहाब यरीहो की निवासी थी और वह भी वहां के लोगों के साथ आश्चर्य से देखती होगी कि अंततः क्या होगा। एक पुस्तक है जिसके शीर्षक का अनुवाद है असामान्य स्थानों में धर्म। मैंने वह पुस्तक पढ़ी नहीं है, इसलिए जानता नहीं कि उसमें राहाब का उल्लेख है या नहीं। यरीहो वह अंतिम स्थान था जहां विश्वास की आशा की जा सकती थी। वह नगर महादुष्ट अन्य जातीय स्थान था। यह स्त्री पापिन थी, परंतु लिखा है कि विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। मेरे विचार में उस नगर के शासक और पदाधिकारी अपने आप को उद्धार के लिए धर्मी समझते थे, परंतु वे सब के सब नष्ट हो गए क्योंकि वे विश्वास से रहित थे। परमेश्वर ने निश्चय ही यरीहो पर दया दिखाई थी, जबकि आलोचक यरीहो के विनाश में परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। कुछ लोग चाहे वर्तमान में किसी के प्रति चिंतित न हो, परंतु यरीहो के विनाश पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। अतः हम अपने अगले अध्ययन में राहाब के विषय विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसने अपने विश्वास को बड़े ही प्रभावी रूप से व्यक्त किया है। मेरे प्रियो, यहां पर हम उन तमाम विश्वास के योद्धाओं को देख रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या आज हम परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हम कलीसिया में ऐसे विश्वासियों को देखते हैं? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस अध्ययन के द्वारा सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।